मैं राजपुत्री हूं, मेरे भाई ने मेरा विवाह दमघोष के पुत्र के साथ करने का निर्णय कर लिया है। विवाह में केवल 3 दिन बचे हैं। आप मेरी चिट्ठी को देख के ऐसा मत समझना कि मैं जो है वो लज्जा छोड़ के ये बात कर रही हूं, लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं शरीर त्याग दूंगी और मैं आपको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। और मैं ये इस जीवन में क्या कई जन्मों तक भी तपस्या करके आपको ही प्राप्त करूंगी और किसी को मेरे शरीर के ऊपर अधिकार नहीं। ये संदेश मैं लाया हूं ब्राह्मण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण मैं भी रुक्मणी की सुंदरता का समाचार सुना है और मुझे मेरी भी निश्चित रूप से मन की कामना है कि मैं उसको प्राप्त करूं। और एक भक्त है जिसने मेरे को चिट्ठी लिख के मुझे प्राप्त करने के लिए भेजा है तो निश्चित रूप से मैं चलूंगा। टाइम नहीं है, अभी चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ मंगाया, दारुक रथ लेके आओ। 4 घोड़े भगवान के रथ में जुटते हैं। घोड़ों के नाम पद्म पुराण में लिखे हुए हैं। प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में घोड़ों के नाम लिखे हैं। सुग्रीवादी उनके नाम है, उनके रंग है। अब घोड़े जब युद्ध के तैयार हो गए, दारू को बोला रात रात में 12 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय हुई। द्वारका से अमरावती 1000 किलोमीटर से दूर है, लेकिन वो बहुत तीव्र गति से भगवान का रथ चल के द्वारका की तरफ रवाना हुआ। दो शादी की तैयारी तो पहले से हो गई थी। वहां शिशुपाल अपनी बारात लेकर आया, उसके बाराती कौन थे? जरासंध महाराज, दंडवकर उसका भाई, शल्य, हाँ, और शालव, ये जितने असुर थे उसके साथी सब उधर आए। बड़ा कैंप लगा। महाराज भीष्मक ने उन सब के लिए व्यवस्था की थी। और इधर घर में रुक्मणी के विवाह की तैयारी मंगल कार्य हो रहे थे कन्या के। रुक्मणी बहुत चिंता में, अभी तक ब्राह्मण वापस नहीं आया, श्री कृष्ण का संदेश भी वापस नहीं आया। ऐसे तो नहीं है कि देवता नाराज हो गए हैं, ऐसे तो नहीं है कि मेरी चिट्ठी को देखकर भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे बहुत चिंता कर रही है, बहुत सी चिंता के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इतनी देर में रुक्मणी जी के वाम भाग, लेफ्ट साइड की आंख और हाथ, वो उसमें थोड़ा कंपन हुआ। तो अच्छे शोकन हो रहे हैं, अच्छे ओम, ये अच्छे जो है वो ओम क्या कहते हैं, ओमेन ओमेन क्या, अच्छे सुगन हो रहे हैं, इज ए साइन ऑफ सम गुड न्यूज। इतनी देर में ब्राह्मण अंदर प्रवेश किया, ब्राह्मण को प्रणाम किया रुक्मणी ने। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता समाचार, स्वर समाचार, कृष्ण आ गए हैं और आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। इच्छा तो बहुत थी, लक्ष्मी थी, कुछ भी दे सकती थी ब्राह्मण को, इतना बड़ा कार्य करके आया था। लेकिन कैसे भी रुक्मणी ने केवल हाथ जोड़ के कहा, नमस्कार ब्राह्मण देवता। इसलिए कभी कभी ब्राह्मण कहते हैं, लक्ष्मी उस दिन कुछ अगर दे देती ब्राह्मण को तो ब्राह्मण बेचारे गरीब न होते हैं। लेकिन मां ने केवल नमस्कार ही किया। लेकिन लक्ष्मी के नमस्कार से ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। रुक्मणी ने कृष्ण को लिखा था चिट्ठी में कि आप कैसे मुझे ले जाएंगे, आप ये अगर जानना चाहते हैं तो हमारे यहां नेम है, पूजा होती है देवी की, जो स्थान है जहां पूजा होती है उसका नाम है कोंडनीपुर, वहां सुबह सवेले में जाऊंगी, आप मुझे वहां से अपहरण कर सकते हैं। तो पहला विवाह रुक्मणी और श्री कृष्ण का हुआ, उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जो चिट्ठी के द्वारा हुआ, जिसको आज की भाषा में लव मैरिज कहते हैं, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। अब गंधर्व विवाह हो गया। दूसरे दिन सुबह इतनी देर में कृष्ण वहां पहुंच गया। अब जो कृष्ण वहां पहुंचा तो बलराम जी द्वारका में कहते, कृष्ण कहां चले गए? किसी ने कहा वो ब्राह्मण के साथ रथ में यहां से चले गए हैं विदर्भ देश, विदर्भ देश चले गए हैं, वहां महाराज भीष्मक के वहां, अरे वहां तो शिशुपाल आएगा और जरासंध आएगा, ये तो हमारे पुराने शत्रु हैं, अकेले कैसे कृष्ण चला गया। बलराम जी कहना सेना तैयार करो, यदुवंश की एक अक्षुणी सेना ली, रथ लेकर रात रात में वहां से बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा और सुरक्षा के लिए आके सुबह वो भी पहुंच गए आके विदर्भ में। अब महाराज भीष्मक दोनों का स्वागत किया, यदुवंशियों का स्वागत किया, उनको बहुत अच्छा स्थान रहने का दिया। शिशुपाल वाले कह रहे हैं कि इसको इनवाइट किसने किया है, ये कृष्ण बलराम कैसे आए, इनको किसने बुलाया। और भीष्मक महाराज कहते हैं ये शिशुपाल वाले ने तो नहीं बुलाया, उसका मासी का लड़का भाई है, उनकी तरफ से तो नहीं आया है। अब किसी को पता नहीं है कि वो बारात में आए लड़की की तरफ है कि लड़के की तरफ है, सभी कंफ्यूजन में। आजकल की शादियों में ऐसे होता है, कोई भी लड़का अच्छा कपड़ा पहना किसी शादी में खड़े होकर खाना शुरू करता है, पता नहीं किसकी तरफ से आया है। पता लगता है कौन किसकी तरफ से, नहीं पता लगता है ना। पुराने जमाने में बारात आती थी तो उसके स्वागत के लिए बारात के पहले लोग जाते थे बाहर और स्वागत करते थे, सबको तिलक लगाते थे, जो जो बाराती आते थे उसको स्टैम्प लग जाती थी कि ये बाराती है, बगैर स्टैम्प वाला अंदर नहीं आता, उनका स्वागत हुआ करता था। खड़े खड़े नहीं खाते थे आजकल जैसे खाते हैं ऐसे है? बफेलो की तरह ऐसे नहीं खाते थे, बिठा के प्रेम से। आजकल की शादियों में दो आदमी को भोजन नहीं मिलता है, एक दूल्हा को एक उसके बाप को, दोनों पूजा में लगते हैं, बाकी सब खाके चले जाते हैं, जो बच्चा खचा होता है गर्म करके उन बेचारों को खिलाते हैं। पहले जमाने में हमें तो हमने आंखों से देखा है, और शादी के समय पहले जिसकी शादी होती थी उसको बहुत सुंदर आसन के ऊपर बिठा के उसके अगल जैसे ये टेबल है ऐसे एक स्पेशल टेबल बनता था लकड़ी का, सिर्फ उस काम के लिए, उसी दिन के लिए, उसके लिए, उसके ऊपर बड़ा थाल है, उसके अंदर सब भोजन पहले दूल्हा के थाली में पड़ता था, और वो जिसको भोग लगाना होता था अपने देवता पितर को जो भी है उनको करके, वो जब पहले वो खाता था तब दूसरों को खाने की इजाजत होती थी। अब सब खा जाएंगे तब बेचारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उस शादी में ऐसे मेहमान तो सब बहुत आ गए, सबका स्वागत हो गया। अब दूसरे दिन सुबह रुक्मणी को ब्राह्मण स्त्रियां, कुछ बूढ़ी समझदार स्त्रियां उनकी मां के साथ लेकर कोंडनीपुर के मंदिर में देवी की पूजा के लिए जाने लगी। ये कोंडनीपुर का मंदिर अमरावती से 50-60 किलोमीटर है, आज भी देवी का मंदिर वहां है नदी के किनारे पे। अब इस्कान का वहां मंदिर लोकनाथ स्वामी महाराज बना रहे थे, वहां एक मंदिर इस्कान का बन रहा है, अमरावती में है लेकिन कोंडनीपुर में भी बन रहा है, क्योंकि वो रुक्मणी का जन्म स्थान है और रुक्मणी का राज्य था वहां पिता का। और प्रभुपाद जी इसके ऊपर लिखा है कि लोग कहते हैं कि पहले मूर्ति में भगवान की पूजा नहीं होती थी, देवी की पूजा उस जमाने में भी हो रही थी, तो लोग कैसे कहते हैं 5000 साल पहले राजकुल की देवी थी उसकी पूजा करने जाते थे, तो ये तो तब भी पूजा होती थी, तो कैसे लोग कहते हैं कि पहले पूजा नहीं होती थी ठाकुरों की। वैष्णव लोग भगवान विष्णु की रामना कृष्ण नारायण की पूजा करते थे, लेकिन जो शक्त लोग हैं तब राजा महाराजाओं के घर में देवी का कुल देवी का मंदिर होता था, उसकी पूजा होती थी। अब जब रुक्मणी देवी के मंदिर में पूजा के लिए गई तो बूढ़ी माताएं ब्राह्मणों ने सबने कहा अब ऐसे करो, गणेश जी की पूजा करो, मां दुर्गा की पूजा करो। रुक्मणी कहे दुर्गा को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, लेकिन दोनों को कृपा करके विनती करती हूं कि कृष्ण मेरे को पति के रूप में मिले। ये तो आस्ते आस्ते बोलती है, कोई सुनता नहीं, लेकिन बोलती है हे गणेश जी इस बात में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, मां मेरे को पति के रूप में कृष्ण प्राप्त हो। पूजा पूरी हुई, प्रसाद लिया रुक्मणी ने वहां से, बाहर निकली तो पैदल चल के आ रही है कुछ सहेलियों के संग में, कुछ बूढ़ी माताओं के संग में। लोग बाहर रुक्मणी को देखने के लिए खड़े थे, सैनिक जो आए हुए राजा महाराजा, और कोई हाथी पे कोई घोड़े पे रथ के अंदर सब देख रहे थे। और कितनी सुंदर थी रुक्मणी, वो आंख ऊपर उठा के थोड़ी सी मुस्कुराए और उसके कुंद जैसे सफेद दांत बाहर निकलते तो घोड़े के ऊपर बैठे बैठे सैनिक ऐसे मूर्छित होकर नीचे गिर गए, हाथी के ऊपर बैठे हुए लोग नीचे गिर गए। ऐसा भागवत में लिखा है कि उसकी सुंदरता को देखकर सब लोग के शिशुपाल का भाग है, शिशुपाल का भाग है, इतना ही तो सबका है, उसको देख के आश्चर्य। लेकिन लेकिन रुक्मणी तो केवल ढूंढ रही है कृष्ण कहां है, उसने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। लेकिन कृष्ण का इतना समाचार सुन के उसके हृदय में कृष्ण की जो मूर्त बनी हुई थी, देखा सामने, हाँ वो सांवला सा खड़ा है सामने। मन में आया कि भाग के जाऊं उसके रथ के ऊपर चढ़ू, लेकिन मर्यादा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मेरे को बुलाया अब तो उसको मैं ही जाके उठाऊंगा हाथ देकर, अब उसको मेरे पास आने की तकलीफ करनी पड़ेगी, फिर जो मुझे बुलाए और फिर भी उसको आने का परेशानी क्यों करनी पड़ेगी, मैं तो भावसागर के पार कर देता हूं, यहां तो कोई मुश्किल नहीं है। भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, हाथ देके रुक्मणी को ऊपर रथ के ऊपर चढ़ाया और भेड़ियों के बीच से शेर जैसे अपना शिकार उठाता है ऐसे लेके भगवान ने रथ आगे बढ़ा। अब तो सब लोग जो गिरे थे, अरे 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 शिशुपाल की, अरे शिशुपाल की वधु को उधर गोटे को ले जा रहे हैं, वो वसुदेव कृष्ण ले जा रहे थे, उठो 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 उठाओ हथियार और तीर उठाओ तमा। तो अब तो जरासंध आदि सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। रुक्मणी कहती अब क्या होगा, कृष्ण की ओर देखें। कृष्ण बोला आप चिंता मत करो, दाऊ जी है पीछे, यदुवंशियों की सेना है, इनका आप देखो अब क्या करते हैं, आप घर ससुराल पहुंचने से पहले पहले देखो क्या हो रहा है। इतनी देर में दाऊ जी खड़े होकर सबको जो यदुवंशियों की सेना ऐसे मारने लगी, सबने देखा शादी शिशुपाल की, हम अपने आदमी क्यों मराए यहां। थोड़ी देर के लिए सबको जोश आए आगे, भाई कुछ करना चाहिए, तो बोले सेना हमारी मर रही है, हमारा ना कुछ लेना देना, हम तो केवल बारात का भोजन खाने आए थे। तो सब जनासन लौट के शिशुपाल को बैठा, शिशुपाल तुम्हारी हमें बहुत दुख है कि तुम्हारी पत्नी को कृष्ण उठा के लेके 17 बार मेरे को भी उसने हराया था, लेकिन हमारा वक्त आएगा, आप उसकी चिंता मत करो। वो रो रहा है, बोला चिंता क्या करो, पत्नी को ले गया, आप चिंता न करो, क्या चिंता करनी। लेकिन कौन आदमी बारात में रहेगा, दूसरे दिन सब लोग वहां से चले, अब तो कोई रहा नहीं। तो इतनी देर में रुक्मी जो भाई था बड़ा रुक्मणी का, वो अपनी सेना लेके बाहर निकला, कहा शिशुपाल तुम चिंता मत करना, तुम यहां रुकना, मैं जाता हूं, कृष्ण को मार के रुक्मणी को वापस नहीं लाया तो मैं वापस कौन निपुर नहीं हूं। अब अपनी सेना लेके यहां से ये चला आगे, और ये यदुवंशी की सेना और उनके बाकी युद्ध हो रहा है आगे। रुक्मी ने देखा कृष्ण के रथ के ऊपर रुक्मणी को ले जा करते हुए, तीर चलाता है रुक्मी और मुंह से बोलता है ग्वाला कहां लेके जा रहा है हमारी बहन को, रुक जाओ मेरे से लड़ाई करो। भगवान श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं, लेकिन तीरों का जवाब तीरों से देने लगे। और फिर एक समय भगवान ने एक बार 6 तीर मारे, उसके घोड़े मार दिए, उसका सारथी मार दिया, उसके जैसे वो कमान उठाए वो कमान की डोरी काट दे, 3-4 डोरियां कट गई। अब तो रुक्मी का गदा फेंकी भगवान ने, गदा को तोड़ दिया श्री कृष्ण ने, अब हाथ में तलवार लेके भागा, तलवार काट दी भगवान ने, और फिर पकड़ के रुक्मी को तलवार अपनी निकाली। अब रुक्मणी चरणों पे गिर के कहती है श्री कृष्ण को मेरे भाई की रक्षा करो, इसको मारो मत। और श्री कृष्ण कहता नहीं नहीं हाँ आपका भाई है, कोई बात नहीं, नहीं मारते हैं इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी ऐसे साफ कर देते हैं। तो भगवान ने ऐसे थोड़ा सा दाढ़ी थोड़ी छोड़ी होगी, थोड़ा मूछ आदि छोड़ दी, 2-4 बाल ऐसे काटे, और कपड़ा पड़ा था वहां रुक्मणी के साथ, कोई कपड़ा था कोई ऐसे, तो कपड़े से बांध के रथ में रुक्मणी को बिठा दिया। रुक्मणी भी डर रही है, भाई का हाल देख रही है। इतनी देर में बलराम जी वहां से सबको हरा के यदुवंशी की सेना लेके आए, और देखा आप कहते हैं क्या करना चाहिए इस वक्त, तो ये हमारी पुत्र, ये हमारी जो बहू है ये घर में पहुंची नहीं है, उससे पहले इसके भाई का ये हाल हुआ है, इसको भी खुश करना चाहिए। और कृष्ण मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा हूं थोड़ा जानता हूं। कृष्ण कहते हैं अपने साले के साथ कभी कोई ऐसे करता है, ये हमारे कुल में किसी को इस तरीके से रिश्तेदार को संबंधी को ऐसा हाल नहीं किया, आपने इसका ये हाल क्यों क्यों बना दिया। और फिर रुक्मणी की ओर देख के कहते हैं बहू आप चिंता मत करो, ये काल ऐसा होता है कभी किसी को कुछ कोई हारता है, क्षत्रिय धर्म इतना कठोर है कि क्षत्रिय धर्म में भाई भाई को मार देता है, अब इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है, आप इसकी चिंता मत करना, ये तो शरीरों का संबंध है, उधर वो ज्ञान दे रहे। फिर कृष्ण को बोलते हैं आपको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप कभी साले को ऐसे करते हैं क्या, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बलराम जी के कहने के ऊपर रुक्मी वहां से गया, वापस तो रुक्मी गया नहीं क्योंकि वचन करके आया था, कोन्नीपुर गया नहीं और भोजकर नाम का एक अपना नया नगर बनाया, वहां रहने लगा। और श्री कृष्ण बलराम जी और सारे यदुवंशी वापस द्वारका की तरफ लौटे। द्वारका में ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को साथ ले आ रहे हैं, भीष्मक पुत्री को। बहुत बड़ा स्वागत द्वारका वासियों ने किया। वो स्थान एक है, उसको कहते हैं माधवपुर। माधवपुर जो आज द्वारका है, वहां से जब सोमनाथ की तरफ जाएंगे, सोमनाथ जहां भगवान शंकर का मंदिर है और जहां सोमनाथ, जहां से भगवान प्रभास क्षेत्र, जहां से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, सोमनाथ में वो स्थान है जहां से भगवान अपने धाम चले गए थे, उन दोनों के बीच में एक स्थान आता है, उसको कहते हैं माधवपुर। समुद्र के किनारे पे, जैसे आपका समुद्र है ना, यहाँ समुद्र के बिल्कुल किनारे पे माधवपुर गांव है, वहां रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ। जो स्थान है कहते हैं यहां उनका विवाह संपन्न हुआ। और ये पहला विवाह कौन सा आपको बताया, रुक्मणी और कृष्ण का, गंधर्व चिट्ठी के द्वारा हुआ, प्रेम का। दूसरा विवाह राक्षस अपहरण करके लाए, क्षत्रियो में ये परंपरा हुआ करती थी, उसको राक्षस विवाह करते हैं, अपहरण करके लाना, किडनैपिंग। अब आप लोग तो गंधर्व विवाह में जा नहीं सकते, उधर जाओगे कैसे, तो चिट्ठी में विवाह हुआ और उठा के आए। राक्षस विवाह में भी आपको इन्विटेशन नहीं मिला होगा। अब तीसरा विवाह हो रहा है, इसको बोलते हैं विधिवत विवाह, वैदिक नमूने। अब तो सबको चिट्ठियां भेजी के कृष्ण का विवाह होने जा रहा है। तो कौरव पांडव आए, कुंती आई, पांच भाई वो आए, पद्म पुराण लिखती है, नंद बाबा को चिट्ठी गई, नंद बाबा यशोदा आए, कृष्ण हमारा कहा विवाह हो रहा है। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तब रुक्मणी का पिता भीष्मक अपने चार भाइयों के साथ कन्यादान करने के लिए भी वहां आया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी के साथ माधवपुर में हुआ और द्वारका के तरफ फिर वो वहां से गए। अब जाएंगे कभी द्वारका में, कोई गया है द्वारका, माता जी द्वारका गई है। द्वारका में एक तो द्वारकाधीश का मंदिर है अभी जो बनाया है, एक बेट द्वारका है जो समुद्र के अंदर है, और वहां से जब आते हैं रास्ते में 6 से 3 किलोमीटर बाहर रुक्मणी का मंदिर है। रुक्मणी का मंदिर अलग है, कृष्ण का मंदिर अलग है, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था तो रुक्मणी का मंदिर ही अलग है वहां। तो वो रास्ते से जाते हुए फिर ये कथा हुई थी, वो पंडित जी वहां बोलता बताता है कभी, वो कथा अलग है बाद में। तो यहां ये पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ। इसके बाद भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा ऐसे होती है कि एक दिन श्री कृष्ण बैठे थे सभा में, तो किसी ने कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बाहर देखो तो सूर्य उगा है। बोला सूर्य तो सुबह उगा है, अभी कौन सा सूर्य उगा है, पर देखो कितना प्रकाश आ रहा है। बोला ये प्रकाश नहीं है, ये मणि है, समंतक सूर्य देव ने दी है, और वो जो आ रहा है ना सामने, क्या नाम है उसका, अपने सत्यभामा का पिता सत्राजीत, ये सत्राजीत है, सूर्य से इसको मणि मिली है एक, वो गले में डालता है तो उससे प्रकाश निकलता है, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजीत है। ये क्या है, बोला ये मणि सूर्य देव की प्रार्थना करने से उसको मिली है, और इस मणि, ये मणि रोज का सोना देती है, 40 किलो से ऊपर सोना रोज देती है। तो श्री कृष्ण सत्राजीत को कहा देखो इतना सारा धन एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, ये राजकोष में दे दो महाराज उग्रसेन को मणि, ये धन जो है ये ट्रेजरी में होना चाहिए। सत्राजीत बोलता नहीं, सूर्य देव ने मेरे को दिया, मैं आपको नहीं दूंगा। कृष्ण को बात भूल गई, सत्राजीत का भाई प्रसेन उसका नाम है, घोड़े के ऊपर एक दिन मणि लेके गले में चला गया जंगल। जंगल में सत्राजीत चला गया, वापस आया ही नहीं। अब तो ये बात फैल गई, कृष्ण ने मणि चुरा ली, सत्राजीत ने दी नहीं और कृष्ण ने मणि को कैसे भी उठा लिया वहां से, कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया। एक ये चौथ का चंद्रमा होता है, फोर्थ डे का चंद्रमा कोई देखता है उसके ऊपर आरोप लगता है। अभी तक लोग ये कथा बताएं कृष्ण के ऊपर आरोप लगा था, कोई एक चंद्र होता है उसको देखते नहीं है उस दिन लोग, पर इस चंद्र को देखने से आरोप लग जाता है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। अब कृष्ण ने कहा तो मेरी बदनामी हो रही है, मैं तो मणि के बारे में जानता भी नहीं हूं, तो अब मुझे ये मणि को कहीं से ढूंढ के निकालना चाहिए। अब श्री कृष्ण कुछ और यदुवंशियों लेकर जंगल में गए, घोड़े के पांव देखे, आगे जाके देखे घोड़ा मरा हुआ है, प्रसीन गिरा हुआ है। अरे प्रसीन मर गया घोड़ा, लेकिन घोड़े के पास में दुर्गा के वाहन शेर के निशान पड़े, तो शेर ने मारा है, शेर के निशान आगे जाके देखते हैं तो शेर मरा पड़ा है, और वहां रीछ के निशान पड़े, तो रीछ के निशान उठा देखते देखते भगवान श्री कृष्ण एक स्थान के ऊपर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी केव थी, गुफा। सब यदुवंशियों का आप यहां रुको, मैं गुफा में जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश किया तो अंदर एक बालक बैठा था, उसके हाथ में मणि पड़ी थी, उसके हाथ में वो समंतक मणि पड़ी थी, बड़ा प्रकाश निकल रहा था, और बालक ने ये आदमी को अंदर देखा, भयभीत होकर मणि को छोड़ के अंदर चला गया, गुफा में और अंदर गया। कृष्ण ने मणि को उठाया, इतनी देर में अंदर में जामवंत, उसने बच्चे को देखा डरा हुआ, मणि कृष्ण के हाथ में देखी और जामवंत ने युद्ध शुरू कर दिया, घोर युद्ध 27 दिन। बाहर खड़े कर यदुवंशी थक गए, अभी तक कृष्ण नहीं आया, वापस द्वारका आ गए और देवी की पूजा शुरू करना कर दी कि भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित वापस आए। यहां 27 दिन युद्ध चला। जामवंत कहता है मैं तो राम के साथ, श्री रामचंद्र के साथ चला गया, रावण के साथ भी युद्ध किया, इतना मैं कभी थका नहीं है, तो फटीगी कैसे हो गया, मैं इतना सारा फटीग कैसे मेरे को हो गया है? तब ये थोड़ा ध्यान करते हैं, ये तो और ये दिखते ये तो रामचंद्र जिसकी मैं पूजा करता हूं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के अंदर तो सभी अवतार समाये हुए हैं। प्रणाम करता है और कहता है मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब तो बोला ये मेरी बेटी जामवती, ये आपको मैं विवाह के हाथ में देता हूं, और जामवती के साथ ये मणि भी आप ले जाइए। तो भगवान उस जामवत गुफा में जामवती को प्राप्त किया और वहां से मणि लेकर वापस आए। ये कभी द्वारका जाएंगे तो उसी रास्ते से जब जाते हैं तो बीच में सुदामा का घर आता है, पोरबंदर, जहां सुदामा ब्राह्मण रहता था। सुदामा के घर से 15-20 किलोमीटर एक हाईवे पे जाएंगे तो वहां मुड़ के नीचे जाएंगे तो वहां जामवत की गुफा है। इस बार हम गए थे द्वारका जब यात्रा में अभी, तो नीचे उतर के मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उतर के गया, उतर के सीढ़ियां अंदर, और अंदर ये आपका घर है, इसके जितने मेरे ख्याल में 10-12 घर हुए थे, इतना बड़ा नीचे गुफा है ऐसे बनी हुई, वो नीचे जमीन में गुफा है पूरी, और ऊपर से कहीं कहीं से पानी गिरता है, और वहां आश्रम किसी ने बना के रखा है, और उस गुफा से 2 रास्ते जाते हैं कहते हैं। पुराने जमाने में एक द्वारका जाता था रास्ता, और एक रास्ता वहां से वो जाता था जहां गिरनार है, तो वो गुफाएं अंदर पड़ी है, जाके देख अभी भी देखा जाता है, थोड़ा अंदर बल्ब लगा दिया नहीं तो अंधेरा होता है। तो जामवत की गुफा में से, और अभी भी वहां की जो रेती है ना, जो वहां की सैंड है, वो ऐसे लगती है जैसे गोल्डन है, दिखने में गोल्डन जैसी लगते है, तो वहां से वो सैंड भी लाए थे भक्त लोग। हम तो गए तब तो बरसात हो रहा था ना, कि वैसे वो स्थान भी कभी जाके जामवंत गुफा को देखना चाहिए, बड़ा अच्छा वहां का पुजारी है, बेचारे ने प्रसाद वसाद खिलाया, हम जितने गए थे 5-7 आदमी। तो भगवान का ये दूसरा विवाह वापस जामवती को लाए, और जामवती के साथ विवाह भगवान का हुआ, और मणि जब वापस भगवान लाए तो जामवती को कहा ये मणि हम वापस सत्राजित को देते हैं, सत्राजित ये तुम्हारी मणि, देखो तुम्हारे भाई प्रसीन को शेर ने मारा, शेर को रीछ ने मारा, जामवत ने ये उसकी पुत्री, और ये मणि आप ले लो। अब तो सत्राजित कहता है मैं, मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई, इसका मैं कैसे उतारूंगा कलंक, मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह आपके साथ कर दे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा बहुत भगवान को प्रिय थी, और सूर्य देवता ने वैसे दी थी, ऐसे तो बहुत इसके और भी रहस्य की कथाएं हैं इसके पीछे के, राधा रानी पीछे यहां से चली गई जमुना में, जमुना से, जमुना सूर्य की बेटी है, सूर्य के पास चली गई और सूर्य ने उसको सत्यभामा के रूप में दिया और वापस हुआ कृष्ण के साथ उसका विवाह हुआ। तो राधा रानी सत्यभामा के रूप में यहां आके द्वारका में भगवान के संग में रही, ऐसा जो है जीव गोस्वामी आदि ने इसका भाव ऐसे लिखे हैं कि एक दिन तो उनका कहां रहे जमुना में गए, जमुना में तो सूर्यदेव के पास गए, सूर्यदेव ने उसको वापस सत्राजीत के पास भेज दिया और भगवान का ये तीसरा सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। लेकिन भगवान का मणि मैं नहीं रखूंगा, मणि सत्राजीत तुम रखो। इतने दिन में भगवान को निमंत्रण आया हस्तिनापुर से, युधिष्ठिर महाराज ने हमारे पास यज्ञ हो रहा है आप आइए। भगवान वहां गए एक दिन अर्जुन के साथ घूमते हुए जमुना के किनारे, तो देखा एक लड़की तपस्या कर रही है। अर्जुन का जरा देव क्या हो, कौन है, क्या कर रही है? अर्जुन क्या बोला, देवी तपस्या कर रही हो, क्या हो रहा है यह? बोला मैं तपस्या कर रही हूं, कृष्ण के साथ मेरे को विवाह करना। अर्जुन वापस आया बोला श्री कृष्ण वो कह रही है कि मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है। बोला बुलाओ, बार बार आज की जरूरत नहीं है, बिठाओ रथ में, कोई खर्चा नहीं करना। ये कालिंदी, कालिंद्र पर्वत की बेटी है जमुना, कालिंदी जमुना जय। तो ये चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ, फिर भगवान हस्तिनापुर को लाए और फिर विवाह आसन में आकर द्वारका में किया। तो ये चार पटरानियां और चार और पटरानियां है, मित्रावृंदा अवंती का नगर उज्जैन की है मित्रावृंदा, और एक नागनजीती है, एक लक्ष्मणा है और एक सैबिया है। इनमें से तीन को तो भगवान उठा के लाए, केवल नागनजीती का विवाह हुआ। और नागनजीती के पिता ने कहा मेरी बेटी के साथ विवाह करने के लिए ये सात बैल हैं, इनको आप पहले बस में करके दिखाओ। जो राजकुमार आते थे कहते थे ये सेवन बुल्स हैं, इसको जो कंट्रोल करेगा उसको मेरी लड़की नागनजीती दूंगा। तो बुल ऐसे थे कि जो राजकुमार आता तो हाथ पांव तोड़ते, कोई आने को नहीं, सब डरते थे, लगे फोटो लगे थे कि ये इसका हाथ टूटा, इसका नाक टूटा, इसका कान टूटा। कोई किसी को हिम्मत नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ऐसे ऐसे कंडीशन शर्त के ऊपर शादी हम नहीं करते। उन्होंने कहा महाराज हमने तो ये हम तो हमारी इच्छा आपको देनी है हमारी कन्या, लेकिन ये नेम हमने बना रखा है, हमारा सम्मान कीजिए। भगवान का ठीक है, भगवान एकदम अपने आप को सात में विभाजित किया, एकदम सेवन, और सात बुल्स को बांध के खड़ा कर दिया। अब तो बहुत जहेज भगवान को मिला नागनजीती के साथ, बहुत हाथी घोड़े रथ मिले, और लक्ष्मणा को मदर देश से भगा के आए, मित्रावृंदा का भाई देना नहीं चाहता था उसको भगा के लाए, और सैबिया, ये आठ रानी भगवान की, इसको बोलते हैं अटपट रानी। बाकी 16,100 वो था नरकासुर भूमासुर। अब भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं द्वारका में, इंद्र आया, इंद्र ने कहा हमारी समस्या है। समस्या क्या है? बोला हमारी माता आदिति के कुंडल भूमासुर लेके गया, वरुण का छाता लेके गया है जो उसके सिंहासन का था, और कुछ तो मंदराचल पर्वत का हिस्सा सर्ग का लेके उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, मणिपुर को लेके बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर और वहां से गरुड़ के ऊपर चढ़े और गए प्रयाग ज्योतिष सर, जहां उसका राज था भूमासुर का। इतना सुरक्षित था उसका जो कंट्री थी, उसको बाहर से तो बहुत बड़ा वाल था, उसके अंदर एक रिवर थी और उसके अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग थी और उसके अंदर अग्नि का था, ऐसे चार पांच वायर जो उसकी बाउंड्रीज थी, और हर एक बाउंड्री पे बहुत लोग रक्षा के लिए खड़े थे। श्री कृष्ण ने पहले तो अपने बाणों से, फिर सुदर्शन चक्र से सबको काटा, तो आखिरी दीवार के पास मूरा सोया हुआ था, पांच सर का राक्षस। वो जैसे जागा, देखे ये कौन आ गया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और भगवान ने मूरा के पांच चारों गर्दन पांचों काट दिए, तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। तो ये मूरा राक्षस को मारा, और तब तो अंदर भौमासुर ने मूरा के बेटे और एक पूरी सेना को भेजा, और भगवान ने सारी सेना को अपने तीर बाणों से समाप्त किया। तब भौमासुर स्वयं लड़ने के लिए आया। ये भौमासुर पृथ्वी का बेटा है और वाराहदेव का, भगवान का बेटा है, और भगवान ही उसको मार रहे हैं क्योंकि असुर हो गया। अब भौमासुर को जब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मारा, तो पृथ्वी देवी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा ये असुर हो गया था, ये कुंडल है मां आदित्य के, ये छाता है आप ले लीजिए। और पृथ्वी ने कहा इसका बेटा है, ये आपसे डर रहा है, इसको आशीर्वाद दीजिए। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद करके रखा था, कोई बड़ा यज्ञ करना था तो उसके लिए। अब राजकुमारियां सब अंदर से बाहर निकली, कृष्ण को देख के कहा कि तो ऐसा पुरुष तो हमारे को जीवन में मिलेगा नहीं, और हम तो एक किसी असुर के कैद में रही है, इतने दिनों तक इसके पास होस्टेज रही है, इसने हमको यहां बंदी बनाकर रखा है, अब हमारे को समाज में कोई लेगा नहीं। कृष्ण ने कहा कोई नहीं लेगा तो हम ले गए 16,100। इन सबको भगवान ने रथ में चढ़ाया और इन रथों को लेकर द्वारका गए, द्वारका में सबके लिए महल बनाया, 16,100 ये हो गई और 8 पहले विवाह हो गए। ऐसे भगवान के 16,108 रानियों और 8 लोग कहते हैं इतने सारे भगवान ने स्त्री से विवाह क्यों किया। पति किसको कहते हैं, स्त्री किसको कहते हैं, जिसके हृदय में पति बसे, ऐसे ना। अब हृदय में बसे ना बसे, आजकल लोग हृदय जैसा लॉकेट बना के उसमें पति का फोटो तो लगाते हैं कम से कम अंदर के अंदर, हाँ हार्ट जैसा लॉकेट बनाते हैं उसमें पति का फोटो लगते हैं, हमारे दिल में पति है। अब हम सबके दिल में कौन है, परमात्मा है कि नहीं, तो इसका मतलब वो हमारा पति है ना, तो हमारा पति हुआ ना। तो ये प्रश्न नहीं है कि उसने इतनी पत्नियां क्यों की, प्रश्न ये कि आपने दूसरे की पत्नी को क्यों पकड़ के रखा, जिसकी दिल में कोई और बैठा है उसको आपने पत्नी कैसे बना दी। भगवान ने क्यों बनाया कि उसके तो अधिकार है, उसके तो सारे हैं, वो एक पुरुष है, बाकी सब है ही, शक्ति है भगवान के ही भोग के लिए है, तो आपने क्यों भोग शुरू किया है, भगवान को छोड़े। इस प्रश्न तो ये है, वो नहीं है कि भगवान ने क्यों विवाह इतने किए। तो भगवान का ये, और फिर श्री कृष्ण को हर एक रानी से 10 बेटे और एक बेटी हुई, और इन सब के बहुत बड़ा विस्तार है इनका। अब यहां इस कथा को विराम देते हैं, और कल तुलसी और सालंग्राम का भी विवाह होगा, तो तुलसी भगवान की गोपी है वृंदा, और सालंग्राम नारायण के रूप में है, तो उनका कल विवाह होगा। तो आज कृष्ण का विवाह हमने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हो गया 1 घंटा। हरे कृष्ण, माता जी ने भगवान के विवाह के लिए आप सबको भोजन का प्रबंध किया है। हाँ, भक्ति तो भगवान के